ओम शांति। तो ये सीरीज चल रही है ज्ञान की गहराई समझाते अव्यक्त बाप दादा की एक सीरीज है क्वेश्चन एंड आंसर। तो आज हम छठा प्रश्न पढ़ेंगे और इसमें सभी इन्वॉल्व होंगे। प्रश्न है तीव्र पुरुषार्थी के क्या लक्षण होते हैं। तो बाबा ने तो शॉर्ट में बताया, फिर विस्तार हम करेंगे सभी। समझाया था ना, उत्तर है समझाया था ना कि फरमान बरदार किसको कहा जाता है, जिसका संकल्प भी बिगर फरमान के नहीं चलता। ऐसे फरमान बरदार को ही तीव्र पुरुषार्थी कहा जाता है। सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे जो शक्तिवान हैं, उन्हों के आगे माया भी दूर से ही सलाम कर विदाई ले लेती है। बलवाचारी लोग अपने शिष्यों को छूने भी नहीं देते हैं। अशुत अगर छू लेता है तो स्नान किया जाता है। यहां भी ज्ञान स्नान कर ऐसी शक्ति धारण करो जो अशुत नजदीक ना आए। माया भी क्या है? अशुत। तो ये प्रश्न का उत्तर था। ये मुरली है, अव्यक्त वाणी है 29 मई 1970 की। तो इसमें बाबा बता रहे तीव्र पुरुषार्थी के लक्षण क्या होते हैं। तो इसमें तो बाबा ने 2-3 लक्षण बताए हैं। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात जिसका संकल्प भी फरमान के बिना, जो फरमान भगवान का दिया उसके अनुकूल ही चले। क्योंकि हमारे पुरुषार्थ का आधार भी क्या है? संकल्प। बीज संकल्प है। अगर हमारा बीज श्रेष्ठ नहीं है, बीज शक्तिशाली नहीं है, तो फिर पुरुषार्थ भी वैसे लड़खड़ाता होता है। इसलिए सबसे पहले तो बाबा हमको बता रहे हैं कि तीव्र पुरुषार्थी वही है जिसका हर संकल्प फरमान बरदार हो, हर संकल्प में फरमान बरदार। जो ऊपर वाले का फरमान अर्थात श्रीमत मिली हुई है, आज्ञा मिली हुई है, उसी अनुकूल चले। उसमें कोई टीका टिप्पणी नहीं, कोई प्रश्न नहीं। उस श्रीमत को के अनुकूल हम पुरुषार्थ पर चल पड़े। और उसमें बाबा कह रहे संकल्प। तो कौन कौन से ऐसे संकल्प हैं जो हमारे तीव्र पुरुषार्थ में बाधक बन जाते हैं, या कौन कौन से संकल्प ऐसे हैं जो हमारी स्पीड, हमारे पुरुषार्थ को आगे बढ़ा सकते हैं। ये जो संकल्पों की पूंजी है, जो संपदा है, जो संकल्पों की प्रॉपर्टी है, जो अमूल्य प्रॉपर्टी जो हम सबको मिली हुई है। संकल्प क्या चीज है? जो भगवान के महावाक्य है, हर एक महावाक्य वो संकल्प है, श्रेष्ठ संकल्प है, शक्तिशाली संकल्प है। अगर हम उन संकल्पों को नजरअंदाज करते हैं या उन संकल्पों पे, क्योंकि संकल्पों का अभाव था हमारे जीवन में जब हमारा शुद्ध जीवन था इससे पूर्व, तो संकल्पों के, शुद्ध संकल्पों के अभाव के कारण तो हम जो एक दुखमय जीवन जीने को विवश हो चुके थे। लेकिन बाबा ने सबसे पहले हमको आकर ज्ञान दिया। ज्ञान भी क्या है? एक शुद्ध संकल्प है, श्रेष्ठ संकल्प है, शक्तिशाली संकल्प है। तो वो बीज है, तीव्र पुरुषार्थ का बीज है संकल्प। तो बाबा यहाँ कह रहे हैं अगर संकल्प भी उसके अनुकूल नहीं है, तो इसे एग्जाम्पल दिया जैसे बल्वाचारी लोग हैं। तो बल्वाचारी लोग जो है वो किसी अशुद्ध को अपने साथ छूने नहीं देते हैं। तो यहाँ अशुद्ध क्या चीज है? जो भगवान के महावाक्य हैं वो हैं एक बल्वाचारी के समान है। और अशुद्ध संकल्प जो हैं, जो हमारे नेगेटिव थॉट या व्यर्थ संकल्प बुद्धि के अंदर भर के रखे हुए हैं, तो ये बल्वाचारी जो लोग होते हैं किसी को छूने नहीं देते थे। ये बल्वाचारी सबसे पहले शंकराचार्य हुए, शंकराचार्य के बाद रामानुजाचार्य, उसके बाद माध्वाचार्य, उसके बाद फिर बल्वाचारी आते हैं। तो बल्वाचारी जो है आज भी हम संसार में देखते हैं, सुनते थे कि कोई भी है, पुराने जमाने के लोग, आजकल नए वाले कम ही होते हैं, पुराने जमाने के जो बूढ़ी माता है, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, किसी को छूने नहीं देते थे। तो अगर छूते तो फिर स्नान करते थे। अभी अभी कोई कोई होते हैं, अभी यहाँ यज्ञ में भी होते हैं जो अपने बर्तन लागे रहते हैं, वो टच नहीं करने देते किसी को भी। अगर टच कर ले तो वो भोजन भी छोड़ देते हैं। यहाँ भी कोई है ऐसी। और कोई मधुबन में भी ऐसे आते हैं जो घर से अपने बर्तन लेके आते हैं, ऐसा भी देखा जाता है। और वो पानी भी यहाँ के अपने गिलास में पियेंगे। तो ऐसे ही बाबा ने जो हमको शुद्ध संकल्पों की प्रॉपर्टी दी है या खजाना दिया है, उसको हम कहां तक इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, कहां तक धारण कर पा रहे हैं। तो उसके लिए बाबा ने कहा सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे शक्तिवान हैं। माना बाबा को हम पर भरोसा है, विश्वास है, पूरा फेथ है कि जैसे वो सर्वशक्तिवान है वैसे तुम बच्चे भी शक्तिवान हो। लेकिन वो फेथ जो है कहीं ना कहीं हमारा लड़खड़ा जाता है, स्वयं के ऊपर हमारा उतना फेथ नहीं रहता है कि पता नहीं इस उपलब्धि को हम, इस गोल को हम अचीवमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उतना अपने ऊपर फेथ नहीं रहने के कारण हमारे पुरुषार्थ में कहीं ना कहीं रुकावटें आती हैं। और फिर बाबा कह रहे हैं यहाँ, अगर अशुद्ध छू लेता है तो बार बार स्नान किया जाता है। तो इस पुरुषार्थ के मार्ग में, तीव्र पुरुषार्थ के मार्ग में, अगर कोई हमारा ऊपर नीचे पुरुषार्थ होता भी है, कहीं उसकी गति मंद पड़ जाती है या कहीं ना कहीं कोई परिस्थितियां आ जाती हैं जिन परिस्थितियों को हम मन में पकड़ के रख लेते हैं, अशुद्ध संकल्प हैं, तो उनसे मुक्ति पाने के लिए बाबा यहाँ कह रहे हैं बार बार ज्ञान स्नान करो। तो हमको ज्ञान स्नान जो निरंतर करते रहना पड़ेगा, हमेशा ज्ञान में डूबे रहना पड़ेगा, क्योंकि लंबे समय से आत्मा जो अशुद्ध संकल्पों से ही प्रेम कर बैठी है वो, है ना। जो भी है पुरुषार्थ में हमारे अनेक प्रकार के बंधन जो है, वो बंधन जो आत्मा को आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो पहले तो हमको उन बंधनों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे बाबा ने एक बार ये भी कहा कि एक बार मुरलियों में आता है तीव्र पुरुषार्थी अर्थात जो अपनी कमजोरियों के बारे में भी जानता हो, अपनी कमजोरियों का चिंतन कर उनसे मुक्ति पाना, ये भी तीव्र पुरुषार्थ है। तो पहले तो कमजोरियां अर्थात जो अशुद्ध संकल्प हैं, पहले हमें उनके बारे में थोड़ा विस्तार से, हमें स्वयं के संकल्पों के बारे में जो अशुद्ध हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, या बंधन है जो, तो कौन कौन से ऐसे बंधन है, या सारे दिन में कहाँ कहाँ हमारा जो पुरुषार्थ गिर जाता है या स्पीड कहीं कम हो जाती है, स्लो हो जाती है, फास्ट नहीं होती, उसके बारे में हमको पहले उसका अच्छी तरह से परिचित होना चाहिए कि अमृत वेले से लेकर रात्रि तक कहाँ कहाँ हम माया जो है सेंध लगा रही है हमारे पुरुषार्थ को, कहाँ ना कहाँ वो में बाधा डाल रही है। तो सवेरे उठने से लेकर रात्रि तक, तो सबसे पहले तो अमृत वेले पर हम चर्चा करते हैं। तो अमृत वेले माया कैसे आती है? नींद के रूप में आती है, सुस्ती के रूप में आती है, अच्छा फिर थकान के रूप में आती है, थोड़ा हल्का हल्का बुखार भी लगता है, थोड़ी ठंडी भी चल रही है, फिर सोचते हैं अभी कमरे में कर लिया जाए, कोई बात नहीं कि बाबा ने तो हमको सहज राजयोग बताया हुआ है। लेकिन जब तक हम उस कमरे को नहीं छोड़ते या उस स्थान को, जो शयन कक्ष है या जो खटिया है, चारपाई है, उसको नहीं छोड़ते हैं, तब तक हमारे संकल्प भी वैसे ही रहते हैं। तो पहले तो हमको वहां देखना पड़ेगा कि माया कैसे प्रवेश कर रही है, वहां थोड़े टाइम के रूप में प्रवेश कर रही है कि अभी थोड़ा 10 मिनट और सो लेते हैं, ये भी माया कैसे कैसे सेंध लगाती है हमारे पुरुषार्थ को, कैसे शुरुआत से जो हमारा फाउंडेशन है वहीं से कैसे माया अपना काम करना शुरू कर देती है। तो हमको पहले तो वो देखना पड़ेगा, अमृत वेला हमारा ऐसे संकल्प आते क्यों है, आकर उनका कारण क्या है। चलो बाजू वाला सोया, अगर बाजू वाला है ही नहीं कोई तो है जी, और भी इजी हो जाता था वो तो। तो वास्तव में कहीं ना कहीं इससे पूर्व जो रात्रिचर्या है, जो हमारा रात्रि सोने का तरीका है, कहीं ना कहीं हमारा उसमें तो कुछ ना कुछ अवहेलना हो रही है, उल्लंघन हो रहा है श्रीमत का। इसलिए हमारा जो अमृत वेले का उठने का जो आदिकाल है, या जो परमात्म शक्तियों से हमें स्वयं को फुल चार्ज करने का जो समय है, उससे माया हम सबको किनारा करा देती है। तो सवेरे अमृत वेले से पूर्व हमको पहले उसकी तैयारी करना जरूरी है रात्रि, और उसका वैसे देखा है सारे दिन का एक सर्कल है, सारे दिन में भी उसका प्रभाव भी पड़ता है। तो रात को हम थोड़े ईश्वरी महावाक्य, बाबा के महावाक्य पढ़ के सोए, उसका मनन चिंतन करें, और ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं होती है। लेकिन होता है क्या है, कई बार हम ये सोचते हैं कि आज तो पढ़ लिए, लेकिन सवेरे सवेरे कभी याद नहीं आएंगे वो, और ये सोचते हैं कि ये तो याद आ ही नहीं रहे हैं। लंबे समय के बाद वो रात के पड़े हुए माँ के भाबा के कई महीने, 2 महीने, साल बाद भी शुरू हो सकते हैं कि याद आए जो रात को पड़े हुए हैं। क्योंकि लंबे समय से हमारी आदत कौन सी पड़ी है, जो सारे दिन में बातें हमने पकड़ के रखी है मन बुद्धि में, वही बातें बार बार घूमती रहती हैं, और वही बातें फिर सवेरे उठते वो याद आएंगी। इसलिए हमको इस तीव्र पुरुषार्थ के पथ पर जो हम चल रहे हैं, इस पर हम सबको डिसहार्टेड नहीं होना है, बल्कि हमको अपनी दिनचर्या को मजबूत, जो फाउंडेशन है उसको मजबूत करने के लिए पहले से हमको इस की तैयारी लंबे समय से करने की जरूरत है। तो रात्रि को हम थोड़े ईश्वरीय महावाक्य पढ़ें, उस पर थोड़ा मनन चिंतन करें, कुछ सोमान अच्छे निकालें, जो मुरली मेथड अनेक प्रकार के निकाले हुए हैं उन पर थोड़ा फोकस करके, जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं जो मेथड खुद के, ऐसा नहीं कि सबको मेथड बहुत अच्छे लगते होंगे सारे निकाले हुए, हम खुद अपने स्तर पर कौन से मेथड हमको अच्छे लग रहे हैं, प्रश्न उत्तर है या उसमें फिल इन द ब्लैंक्स है या एग्जांपल मेथड है या स्टोरी मेथड है, चर्निंग मेथड है, तो कोई ना कोई जो जिससे हमारा पुरुषार्थ, क्योंकि जो हमारा पुरुषार्थ बढ़ेगा वो दूसरे को पता नहीं कि मेरा पुरुषार्थ कैसे बढ़ेगा, वो हमें स्वयं को ही पता मेरा पुरुषार्थ कैसे बढ़ेगा, तो उस पर हमको थोड़ा फोकस करके पहले से उसको एक आदत डालनी है कि रात को हम थोड़ा मुरली पढ़कर सोएं, और मुरली या कोई भी स्पार्क की बहुत सारी किताबें अलग अलग टॉपिक की, उसके ऊपर थोड़ा चिंतन मनन करके उसको अप्लाई करने का प्रयास करें, तो अमृत वेले उठते हमारे वही संकल्प चले। और दूसरा, फिर अमृत वेले उठ भी जाते हैं उसके बाद फिर माया कहाँ आती है, मुरली में आती है। और अमृत वेले भी, अमृत वेले का जो समय है, एक तो ये तो अभी अमृत वेले हम उठे हैं, जागृति हुए, अमृत वेले किया नहीं है अभी, अभी तो अमृत वेले उठे हैं, उसके बाद जो अमृत वेले का टाइम है, अगर मैंने उस टाइम में लक्ष्य नहीं रखा है तो फिर संकल्प दूसरे दूसरे आते रहेंगे, तो उस समय भी हम सबको क्या करना है वो पहले से हमको पता होना चाहिए कि इतने समय में 45 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे, जितना भी जिसकी क्षमता है जाकर अपने को जागृत रखने की, उसमें हमको क्या कर्तव्य करना है वो पहले से हमारा निर्धारित होना चाहिए। अगर वो निर्धारित नहीं है तो संकल्प चलेंगे नहीं। पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं, योग जो है केवल बैठना योग नहीं है, एक ज्ञानमय योग है, माना योग में बैठे भी हमारा ज्ञान का चिंतन चलता रहना चाहिए, वो योग से संबंधित। जैसे योग में हम बैठे हैं तो योग में करना क्या है कि संबंधों का अनुभव करना है, या साकार देना है, या कोई भी विघ्न, जो बाबा कहते हैं विघ्न है, समस्या है, उनको पहले से ध्वस्त करने के लिए, खत्म करने के लिए अपने को शक्तिशाली बनाना है, बाबा से हमको स्वयं कनेक्शन जोड़ के चार्ज करना है, फुल चार्ज करना है, प्रकृति के तत्वों को साकार देना है, जो भी है वो पहले से हमारी रूपरेखा निर्धारित होनी चाहिए, तो हम अमृत वेले पर हम उसका सुखदायी अनुभव कर सकते हैं, नहीं तो फिर वो साधारण चाल बनती जाती है, और दिन प्रतिदिन उसमें नवीनता होनी चाहिए। अगर एक ही एक चीज हम करते जाएंगे बार बार तो फिर वो देखेंगे, ऐसे अनुभव होता है कि 8-10 दिनों बाद या कुछ दिनों बाद लगता है ठीक भाई भाई, तो उसको कुछ नए तरीके से करना पड़ेगा, कुछ नए संकल्पों का निर्माण करने पड़ेगा, तो हमारा अमृत वेला जो सुखदायी होगा, अच्छा अनुभव कर सकते हैं, और फिर अमृत वेले जो अतीन्द्र सुख का अनुभव है उसका हम पूरा दिन भी उसको अनुभव महसूस कर सकते हैं। तो ये अमृत वेला हो गया कि तीव्र पुरुषार्थ को करने के लिए पहले हमारा अमृत वेला जो निर्धारित है उसमें हमको क्या करना है ये पहले से क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है मुरली के ऊपर, तो मुरली में माया कैसे आती है, हमारे पुरुषार्थ को माया कहाँ कहाँ हमारे पुरुषार्थ पर चोट करती है, वो मुरली में बुद्धि भटकती है। हाँ, और क्या क्या होता है सबको बताया, बताओ आप सबको क्या क्या होता है, हाँ जी, उबासी आती है, और चलो अच्छा मन बुद्धि भी नहीं भटकता है, उदासी भी नहीं आती है, उसके बाद हाँ ये तो बाबा रोजी कहता है, ये भी आ गई माया, और हाँ ये तो कभी होना नहीं, वो तो पॉजिटिव आ गया, और काम माया आती है, ठीक है तो होना नहीं चाहिए, पॉइंट नोट नहीं करते हैं, और अलर्ट नहीं रहते हैं, और कहाँ कहाँ है मुरली में माया आती है, हाँ यह जो हम भविष्य को पकड़ के बैठते हैं, या तो पास्ट में चिंतन चल रहा था है, या तो भविष्य में बैठे हैं, वर्तमान का सुख ले नहीं पाते हैं, तो वर्तमान में बीज ही श्रेष्ठ नहीं बोएंगे, जो संकल्प ऊपर से आ रहे हैं परम धाम से आ रहे हैं, तो संकल्पों का बीज अगर हम उस धरनी पर सवेरे सवेरे नहीं बोएंगे तो दिन में क्या होगा, फिर दिन में ढूंढेंगे बीज तो है ही नहीं उधर, वो सवेरे माया रूपी पंछी चिड़िया खा गई है और दिन में वो बीज मिलेगा ही नहीं। तो बुद्धि भटकती है कि प्लानिंग बनाते रहते हम यहाँ से, अधिकतर तो यही होता है जो हम भी ऐसा अनुभव करते हैं कि बैठे हैं मुरली में, वो एकाग्रता पूरी चल रही है, अचानक कोई ऐसा पॉइंट आएगा, कोई ऐसा सर्कमस्टांस आएगा, ऐसा कोई दृश्य दिखाई देगा कि फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू कर देंगे कि अब दिन में क्या करना है, फिर सोचेंगे यहाँ के बाद जाके ना अभी अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, यहाँ जाने के बाद नहीं वहीं से पुरुषार्थ शुरू होना चाहिए वास्तव में, वो जो बीच का जो टाइम हो जाता है, गैप हो जाता है, तो वहां भी माया प्रवेश कर जाती है, क्योंकि जब हम मुरली सुनने से बाहर निकलते हैं तो बाहर तो कुछ परिस्थितियां दूसरी होती खड़ी, उनका सामना कैसे करेंगे, तो जो हमको उस समय मिलता है उसी समय हम सबको पुरुषार्थ जो वहीं से शुरू रहना चाहिए हमारा, ताकि बीच में वो गैप ही न मिले, माया को मौका न मिले, चांस न मिले। तो वर्तमान में हमको रहने का एक अभ्यास डालनी है, आदत डालनी है, जितना समय पता नहीं सारे दिन में हमको टाइम मिले नहीं मिले, टाइम तो होगा लेकिन उस समय कौन सी परिस्थिति आ जाए, बुद्धि को ज्यादा इन्वॉल्व करना पड़ेगा उसमें। ऐसा नहीं है कि हमारी उतनी स्थिति शक्तिशाली कि वो हम कर्म करते हुए भी याद कर सके, पता नहीं ऐसे कौन से विकर्म जो पिछले जन्मों के सामने आ जाएंगे, कौन सी ऐसी घोर विपदा आ जाएगी, परिस्थिति आ जाएगी, विकटतम परिस्थिति आ जाएगी कि उस समय बाबा तो साइड में रह जाएगा, भूल जाएगा। लेकिन अगर हमने मुरली के टाइम में उस मुरली को योग युक्त होकर सुना है और उन प्वाइंट को हमने बार बार बुद्धि में चिंतन किया है, उनका बार बार अभ्यास किया है, याद किया है, तो वो फिर दिन में वो शक्ति रूप में काम करेंगे, नहीं तो वे केवल सुनने मात्र ही रह सकते हैं। तो मुरली को साधारणता से सुनना भी एक माया भी जैसे हमारी प्रॉपर्टी को वहीं छीन लेती है, वो सेंध लगा रही है जैसे। तो एक तो मुरली में माया अनेक रूप से आती है, और भी हम चिंतन कर सकते हैं कि इसके रूप में माया मुरली के समय में आती है। उसके बाद फिर माया यहां से तो हम जीत गए समझो, मुरली भी हमने ठीक ठाक सुन ली, फिर कहां आती है माया, दिन में कहां पर, कर्म क्षेत्र पर। जैसे हम कर्म क्षेत्र में आती है तो सबसे ज्यादा माया कहां आती है, जो अपने जिनके साथ हम संबंध संपर्क में आते हैं, जिनके जिनके मुखड़े रोजाना देखने पड़ते हैं, ना चाहते भी देखने पड़ेंगे क्योंकि हमारे साथ ही है वो अगर हम नहीं देखे तो वो आगे दिखाएंगे, अनेक रूप से दिखाएंगे वो, और वो देखने तो पड़ेंगे क्योंकि परिवार है बावन का, ये ब्राह्मण एकत्रित किस लिए हुए, सबको हिसाब किताब चुक करने एकत्रित हुए हैं। कल की मुरली में था ना प्रश्न, कौन सा था कि जैसे बाप से प्यार है परिवार से वैसा प्यार होना चाहिए, कौन सा प्रश्न था वो, हाँ तो सफलता मिलेगी है ना। तो कहने का अर्थ है कि हमको कर्म क्षेत्र पर जम जाते हैं तो सबके साथ मिलजुल कर या सामंजस्य बनाकर तभी रह सकते हैं जब हमारा फाउंडेशन पहले से ठीक है, नहीं तो अपनापन फील नहीं होगा। क्योंकि मुरली एकदम एक ऐसा जादुई छड़ी है या जादुई अस्त्र शस्त्र है जो हमारी बुद्धि में वसुदेव कुटुम्बकम की भावना जागृत करती है। अगर वो भावना नहीं है तो कर्म क्षेत्र जाते फिर कोई अपना नहीं लगता है, फिर हमको वहां अपना स्वार्थ नजर आता है, सामने वाला भी उसी, क्योंकि हमने ऐसे संकल्पों का बीज उस कर्म क्षेत्र पर बो दिया है तो वैसा एटमोस्फेयर होता है, तो सामने वाले भी कोई वैसे टचिंग होगी। इसलिए हमको सबसे पहले तो अपने इस धरनी के ऊपर जो मुरली के बीज हमारे धरनी के ऊपर पड़ रहे हैं तो उनको फलीभूत करने के लिए उसी समय हमको धूप या पानी या जो शक्ति है या जो खाद है उसी समय देना है। अगर उस समय नहीं देता नहीं तो बाद में तूफान आ सकता है, सारा उसको बहा के ले जाएगा, क्योंकि परिस्थितियां क्या है, तूफान के समान आने वाली है, तो उसमें हमको मौका नहीं मिलेगा, चांस नहीं मिलेगा। इसलिए जो मॉर्निंग में हमारा टाइम है इसमें हमको स्वयं को फुल चार्ज कर लेना, भरपूर कर लेना है, ताकि हम कर्म क्षेत्र पर सुगमता पूर्वक अपने पुरुषार्थ को मेंटेन कर सके। तो ये हो गया कर्म क्षेत्र भी हमारा, फिर सबके साथ फिर अच्छा लगेगा, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा, नहीं तो ब्राह्मणों को देख के ही ज्यादा जो हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती है, ये क्यों कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए, मतलब प्रश्नों के संसार में हम खो जाते हैं। तीव्र प्रसाद क्या, कोई प्रश्न नहीं, फुल स्टॉप, बाबा ने कहा सेकंड में फुल स्टॉप, सोचा और मन बुद्धि फुल स्टॉप। जैसे कल था ना, कल तो ये था अंतर्मुखी वह जो जिसमें जहां चाहे वाणी में आए, वाणी से परे हो जाए, उसी तरह से तीव्र पुरुषार्थ जिसमें जहां चाहे हम अपनी बुद्धि को लगा सके, जहां चाहे बुद्धि का विस्तार, बुद्धि को विस्तार में ले जाए या सार में ले आए, तो तीव्र पुरुषार्थ अर्थात फुल स्टॉप, सेकंड में फुल स्टॉप। तो हम कर्म क्षेत्र भी तभी फुल स्टॉप लगा सकते हैं जब पहले हम उसका मेथड होगा, हमारे पास वो शक्ति होगी तभी हम वहां फुल स्टॉप लगा सकते हैं। फिर कर्म क्षेत्र के बाद कहां आती है माया, जो हमारे तीव्र पुरुषार्थ को बांध देती है, कर्म क्षेत्र के बाद, हाँ टाइम वेस्ट, हाँ ये भी एक बहुत जांच करने का विषय है स्वयं के प्रति। जो दूसरे जांच नहीं करेंगे वो हमें जांच करना पड़ेगा, दूसरे दिखाएंगे, देखने में तो आएगा लेकिन जांच तो हमको खुद ही करना पड़ेगा कि हमारा कहाँ कहाँ स्वयं के पालन पोषण में जो अनावश्यक समय जा रहा है, जैसे बताया भाई जी ने वस्त्र में जा रहा है या खाने पीने में जा रहा है या किसी से बातचीत करने में जा रहा है या जो डिजिटल वर्ल्ड है उसमें ज्यादा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा समय वेस्ट चला जा रहा है। इतना अमूल्य समय है और कहां कहां माया उसको चुरा रही है। तो समय भी हमारा जो स्वयं के पालन पोषण में इतना अत्यधिक ना चला जाए, जो हम भाग्य विधाता से जो वरदान मिल रहे हैं उन वरदान से वंचित रह जाए, पुरुषार्थ से। जैसे बाबा ने इस साल कहा समाप्ति, बस तो की चीज का, वो तो एक अलग विषय, अनेक प्रकार की समाप्ति, हमारे पुराने स्वभाव संस्कार की समाप्ति हो सकती है और भी बहुत सारी चीजें हो सकते हैं। तो ये वास्तव में समय कौन सा चल रहा है इसके प्रति हम जागरूक रहें। तो पालन पोषण स्वयं का करना है, अपनी आत्मा का पालन पोषण करना है। कौन से वस्त्र हम आत्मा को पहना के रख रहे हैं ताकि आत्मा उन वस्त्रों में चमकती रहे। इसलिए बाबा ने कहा रोज फरिश्ता ड्रेस पहन के रखो, और अनेक प्रकार के ड्रेस हैं, श्रृंगार है, उस श्रृंगार से अपने को सजा के रखो। नहीं तो अगर वो श्रृंगार नहीं करेंगे तो दूसरे श्रृंगार याद आएंगे, फिर देखेंगे इसकी तो शॉल अच्छी है, इसकी तो जैकेट बहुत अच्छी है, इसके जूते अच्छे हैं, उसी में बुद्धि अटकती जाएगी। तो हमको इन चीजों का भी ख्याल रखना है कि अनावश्यक पालन पोषण में हमारा या दूसरों के प्रति भी हमारा इतना ध्यान रखें, ध्यान न रखें कि उसी में हमारा टाइम चला जाए। तो स्वयं के प्रति इस चेत रहने की जरूरत है। तो एक तो हो गया इसके ऊपर, इसके बाद कहाँ आती है माया जो हमारे तीव्र पुरुषार्थ को रोके रख देती है। हाँ, एक दो को टेलीफोन करना अगर सामने से आ जाए तो शॉर्ट करना है उसको। हाँ उसको तो जो भी हमको समर्थ समर्क में आते हैं अर्थात सामने से हम कर रहे हैं किसी के कनेक्शन में आते हैं तो लंबे समय से बात नहीं करनी, समेटना है। क्योंकि हमने देखा अगर थोड़ा सा हम टाइम देते ना किसी को, अब माना हमने उंगली डालते तो बाजू को डालने की कोशिश करते हैं तो और ये फिर आगे के लिए मुसीबत हो जाती है। एक बार किसी को हम सोल्यूशन दे दिया समझ लीजिए और मान लो उनका काम हो भी गया और अगली बार फिर उन्हीं को ढूंढेंगे वो। तो ये हम सबको स्वयं को सशक्त बनाना है। बाबा ने कहा आने वाली आत्माओं को मार्ग कौन दिखाएगा, तो स्वयं को हम शक्तिशाली बनाएंगे तो आने वाली आत्माओं को कैसे मार्ग दिखाएंगे। लेकिन इतना भी हम डुलाए मान ना हो जाए कि हमारा सारा टाइम उसी में चले जाए, तो कहीं ना कहीं हमको वहां भी साक्षी भाव रखना पड़ेगा। क्योंकि साक्षी भाव की अवस्था में जो हम पुरुषार्थ करेंगे वो ही हमें आगे लेकर जाएगा। अप्रभावित स्थिति रहनी चाहिए, किसी के प्रभाव में नहीं। प्रभाव में आते हैं तो हमारा टाइम फिर वहां चला जाता है, इसलिए इसका भी ध्यान रखना कि लंबे समय से बात नहीं करनी है। कितना समय बात करनी चाहिए बहुत जरूरी बात है, लेकिन वो तो हमारे लिए है, सामने वाले के तो जरूरी है ना। हाँ ये भी तो अब बात तो ये भी ठीक है, उनको उनको सोल्यूशन तो चाहिए, सोल्यूशन मिलेगा तो बात फोन तो करेंगे ना। तो ये भी चीज रखनी है। और कहाँ आती है माया जो तीव्र पुरुषार्थ को रोक देती है, इंटरनेट डिजिटल वर्ल्ड आ गया ये। हाँ तो ये भी इससे हमको स्वयं कोई देखना है कि कितना समय इसको यूज करना है। और कहाँ आती है फिर है? हाँ ये सूक्ष्म रूप में है, अगर कोई पुरुषार्थ में आगे जा रहा है तो भी आती है। वास्तव में देखा जाए कोई किसी के भाग्य को छीन नहीं सकता है, इस बात को हम भूल जाते हैं। तो ये अनेक प्रकार के अंदर जो है छोटे छोटे जर्म्स पैदा होते हैं, ईर्ष्या द्वेष घृणा नफरत बैर विरोध वैमनस्य की भावनाएं, तनाव टेंशन चिंता दुख, ये सब चीजें हम अपने भाग्य को भूल जाते हैं कि हमारे भाग्य को कोई छीन नहीं सकता है। हम देख रहे हैं दूसरे के भाग्य को देखने में लग जाते हैं। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, फिक्स है, और दूसरे के देखने के कारण फिर हम अपने को अपने में ही हीन भावनाएं पैदा हो जाती हैं कि मेरा तो है ही ऐसे है, और हीन भावना जब पैदा होती है तो वो हो ही बैठा जाता है। इसलिए स्वयं के प्रति या स्वयं को जो हमारा श्रेष्ठ भाग्य है, इतना ऊंचा भगवान ने हमें वरदान दिए हैं और इतना ब्राह्मण जीवन श्रेष्ठ दिया है, उसको हम नजरअंदाज करके दूसरों को देखने में लग जाते हैं। शायद वो हमको दिखाई दे रहा है कि वो आ गया, लेकिन वो उसको पता हुआ वो आ गया है नहीं है। अब हमारे मन में क्या चल रहा है तो किसी को पता नहीं है, लेकिन सामने वाला देख रहे तो आ गया है, लेकिन मेरे मन में क्या चल रहा है तो मुझे पता ना कि मैं आगे हूं नहीं हूं। तो इसलिए कोई कह नहीं सकते कौन कहां है, ये तो अंत में पता चलेगा कौन कहां पहुंचा हुआ। और कहां माया आती है, तो ये सूक्ष्म ईर्ष्या द्वेष घृणा नफरत बैर विरोध की भावनाएं ये भी हमारे तीव्र पुरुषार्थ को काट देती है। तो तीव्र पुरुषार्थी अर्थात इन चीजों से ऊपर, उसके लक्षण है इन सब चीजों से ऊपर, समभाव नाम मान शान से परे, इन चीजों से ऊपर समभाव, सबके प्रति एक जैसा, सब अपने हैं कोई पराया नहीं है। कहते हैं जियो तो ऐसे जियो जैसे अपना कोई नहीं है, और जियो तो ऐसे जियो जैसे सभी अपने हैं। तो वो वाला भाव हमारे मन बुद्धि में रहना चाहिए। और हाँ उसमें ऐसे देखिए जब भी हम स्कूल में दाखिला लेते हैं तो दाखिला लेते समय बच्चा पूरी तरह समझ नहीं होता, उसको समझ विकसित करने के लिए टीचर को पढ़ाना पड़ता है। और जब उसकी समझ विकसित होती है, अनेक प्रकार के एग्जाम्पल देके उसको टीचर समझा देता है, तो फिर जो अगले वाले क्वेश्चन होते हैं तो उन एग्जाम्पल के आधार पर वो आगे चलता है। उसी तरह से हमको इस पुरुषार्थी मार्ग में, इस ब्राह्मण संसार में एक दो को सहयोग तो देना ही है, सोल्यूशन तो देना ही है, लेकिन सोल्यूशन हम इस तरीके से दे ताकि उसको वो रास्ता मिल जाए, उस रास्ते पर वो चलने योग्य बनाना है। वो ऐसा नहीं हमारी उंगली पकड़िए, वो उंगली छोड़ देनी। जैसे बाबा ने हमको शुरू में क्या कराया, हम सबको अनेक प्रकार के अनुभव कराए कि शुरू में लगता था कि बाबा हमारे अंग संग घूम रहा है, तुम तो यहीं कहीं बाबा मेरे आसपास हो, लेकिन दो साल के बाद कहां दिखता बाबा। तो वो उसको खुद करना पड़ता, फिर ढूंढना पड़ता है बाबा गया कहां है। तो वो लेकिन दो साल में जो बाबा ने हम सबको ऐसे अनुभव करा दिए कि वो जिंदगी में चलने के लायक बना दिया। उस समय तो बच्चा छोटा था ना, अभी बड़ा हो गया तो खुद के स्तर पर चले। अब बड़ा उसको बता दिया कि इधर नहीं जाना, इधर जा रहा है, और वो चल रहा है, कैसे चल रहा है वो फिर उसका है, अब समझ तो मिल गई उसकी। हाँ, बीच बीच में बाबा ने कहा सचेत कराते रहो, लेकिन अभी वास्तव में वो ऐसा समय नहीं है कि जिसको हम इशारा दें, बल्कि हम अपनी चलन को ऐसा बना के रखें ताकि वो उसको अपने आप महसूस हो जाए कि हमको इस मार्ग पर चलना है। इसलिए है ना, आने वाली संडे में मुरली के ये तुम पार्स पुरी में पहुंचे हो, यहाँ पार्स का संघ है, तो हमारा जीवन ही कैसा चलते फिरते बाबा, कितना लाइब्रेरी बन जाए, म्यूजियम बन जाए, चैतन्य लाइब्रेरी, तो ताकि उसको रास्ता अपने आप मिलता जाए। और कहां माया आती है, सेवा में निमित्त भाव भूल जाते हैं। हाँ, सेवा करते करते इसमें हम निमित्त भाव भूल जाते हैं, और इससे देखा जाता है जब हमारा निमित्त भाव नहीं होता है तो वो सेवा एक मजदूर की तरह लगती है, और उस सेवा से सुख नहीं मिलता इतना। आज थोड़ा सा मन में हल्की सी संतुष्टता रहती है, बाकी एक आंतरिक संतुष्टता, वहां वो भाव नहीं जागृत होता। इसलिए सेवा में निमित्त भाव बहुत जरूरी है कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं कि सचमुच भगवान ने हमको ये सुनहरा मौका दिया है हमारे भाग्य का निर्माण करने का, बल्कि अनेक आत्माओं के भाग्य का निर्माण करने के लिए बाबा ने हम सबको निमित्त बनाया हुआ है, तो वो निमित्त भाव भी हमारा कहीं खो ना जाए। और निमित्त भाव के लिए बाबा ने पिछले संडे की मुरली में बोला था, कौन सी स्थिति में रहेंगे तो निमित्त भाव स्वतः जागृत होगा, निराकारी स्थिति में। तो जो निराकारी स्थिति है उसमें ज्यादा से ज्यादा हमको अभ्यास करेंगे तो हम उस निमित्त भाव हमारे अंदर स्वतः जागृत होगा। और कहां माया आती है, खत्म हो गई माया। इसलिए बाबा ने अंत में बोला, फिर माया विदाई ले लेती है, फिर माया सलाम करेगी, नहीं तो हमको बार बार सलाम करना पड़ेगा, बैठेंगे ओंग में और नींद आएगी तो क्या सलाम ही तो है वो। तो इसलिए माया सलाम करे, इन बातों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो तीव्र पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है, स्वतः तीव्र पुरुषार्थ होएगा। एक है हम मन में रखते हैं कि तीव्र पुरुषार्थ करना है, ये भी एक अटेंशन का टेंशन पैदा हो जाता है। तीव्र पुरुषार्थ करना नहीं है, तीव्र पुरुषार्थ स्वतः हो जाएगा। और कोई प्रश्न, बस पूरा हो गया। तो कल हमको ये जो होमवर्क दिया था, हमको तो दिया था 1 बजे 1:45 बजे, लेकिन हमने रात को 10:30 बजे देखा, तो फिर हमने पढ़ा इसको, पहला ही सेंटेंस जो पढ़ा है, हमने पहले तो सोचा मना कैसे करें, तो पहला जो सेंटेंस पढ़ा, तो पहला सेंटेंस जो पढ़ा समझाया था ना कि फरमान बरदार किसको कहा जाता है, जिसका संकल्प भी बिघन फरमान के नहीं चलता। तो हमने उसमें सोचा ये फरमान ऊपर से आया हुआ है। ओके, ओम शांति।